रखती है, वहाँ पाप रखने में दोष नहीं, हमारे अंगों में ये धारण करने से इसमें दोष है। श्री निकेतन फण फण में फण फण आती नहीं, बहुत ज्वाला तुम्हारे हमारा पैर जल जाएगा, तो कालिए के फण पर आपका पैर नहीं जला, जहाँ पर उससे हजार मुख से बीस निकल रहे थे और उस पर आपने पैर रखा, वो पैर आपका नहीं जल गया तो यहाँ जल जाए? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, हमारे पति लोगों का डर है, तुम्हारे पतियों का हमको डर है, कृष्ण कह रहे हैं। तो हमारे पतियों का डर, अरे कालिए से जब आपको डर नहीं हुआ तो हमारे पतियों से क्या डर है? इसलिए समस्त शोभा का कल्याण का आस्पद आपका श्री चरण कमल है, इसलिए सूजा अथवा प्रणत कामदम पद्मजार की कम धरणि मंडनम हेयमापदी चरण पंकजम संत चंदते रमणनाथ इसके पहले ही और ये भी उन्होंने कहा प्रणत कामदम, जितने भी प्रणत हैं उनको कामदम काम को देने वाले हैं। यहाँ पर भी वही अपराधियों को समझ लीजिए, ब्रह्मा जी काली नाग और कौन, जितने भी प्रणत हैं प्रणत कामदम उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और हमारी कामनाएं अधूरी रह जाएंगी। हमको अपना चार दर्शय नील रुहाननम चारु दर्शन, आप अपना नीलकमल का जो सुंदर मुख है वो आप नहीं दिखला सकते, हम तो केवल यही चाहती हूँ, प्रणत कामदम। और कैसे पद्मजार्चितम, पद्मज पद्म से उत्पन्न होने वाले, और आपके चरण कमल भी तो वैसे ही कमल है ना, इसलिए दोनों में कुछ क्षमता है, इसलिए पद्मज अर्चितम ब्रह्मा जी उसकी
पद्मजा अर्चितम,
पद्मजा माने ब्रह्मा, पद्म से उत्पन्न हो वाले ब्रह्मा जी जो हैं उस सब समय अर्चन करने वाले हैं। कब? विशेष करके ब्रज में गौओं के और बछड़ों के और सखाओं के अंतर इसके चुराने के बाद ब्रह्मा जी ने अपना अपराध समझा और उनके चरणों में प्रणाम। उस समय में पद्मजार्चितम धरणी मंड धेयमापदी, ध्यानापदी मैंने ध्यान मात्र से ही समस्त आपदों को दूर करने वाले होते, शंकर इत्यादि का मोहनी रूप में वो बड़े विकल हो गए, मोहनी रूप में नहीं भस्मासुर के समय व्याकुल हो गए, तो प्रभु को पुकारा और प्रभु आते ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बैठ गए और पीछे से भस्मासुर मैदानों आ रहा था, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, विकासुर तो का तो शिव को देखा तो किस लिए शिव की जरूरत, तो एक वर दिया वो देखेंगे वो ठीक है कि नहीं, अरे उस पर तुम विश्वास करता है उसका बात का कोई ठीक नहीं, तुम एक बात करो तुम यहीं पर रख करके या देख लो शिव पर, बस माया से मोहित कर दिया गया। उसने कहा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, हम दूसरों को क्या देखे, उसने जरा देखे तो देखा उसका हिस्सा चल हे अमापदी, ध्यान मात्र से ही यदि कहो जी हमारे समय में तो विलंब हो रहा है, कितनी विपत्तियां आ रही, तो तुम अभी जिसको विपत्ति समझ रहे हो या समझ रही हो अभी उस तरह की विपत्ति अभी नहीं आई, अभी प्रहलाद महाराज जैसा अभी हरिदास ठाकुर जी से जैसा संपत्ति वो आने दो ना, थोड़ा सा विपत्ति 22 बाजार में नंगे करके मारेंगे और मार करके खून और चमड़ी सब उधेड़ लेंगे, मांस भी उधेड़ लेंगे, जरा ऐसा तो होने दो। इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहीं कुछ बोले भाई क्यों मार रहा है, कभी किया कि नहीं, क्यों मारा, हम देख लेंगे तुमको, भले ही ना देखे हाँ जो कर, अच्छा भाई अब तो बहुत मार लिया अब तो छोड़ दो, गिड़गिड़ाए कभी कुछ नहीं,
और मार
नहीं, ये भी नहीं कहा, ये उनको आदेश क्यों देने जाए, हमारे जैसे बेवकूफ नहीं है वो, इसलिए भी नहीं कहा, उन पर छोड़ दिया, ये भगवान की तरफ से ये कुछ हो रही है, बस उसको उसी रूप में ग्रहण कर लो, बस कुछ नहीं बोले, बल्कि ये कहा कि प्रभु यदि इनका कुछ अपराध हो रहा है, लोग हमको भक्त कहते हैं, सचमुच में मैं भक्त नहीं हूँ, और यदि भक्त हूँ लोगों की दृष्टि में, तो प्रभु ये अपराध उनको ना लगे, आप इनको क्षमा कर देना, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा ज़्यादा कर करके देखो, देखो जैसे कहाँ दूर है वो, ये रखो विश्वास रखो पक्का, वो पालन करते हैं और रचना भी वही करते हैं, सृष्टि भी वही, और पालन भी करने वाले व्यक्ति वही हैं। भक्ति का यही पहला संकल्प, मैं भक्ति का अतिरिक्त और कुछ नहीं करूंगा, भक्ति छोड़ नहीं सकता, किंतु किसी से प्रतिवाद भी नहीं करूंगा, इनसे क्या प्रतिवाद, प्रतिवाद करना है तो किससे करूंगा, प्रभु से करूंगा। तो जैसे देखिए आपका नाम डूबा जा रहा है, लोग कहेंगे जी आप कोई दया करने वाले भगवान नहीं है, इसलिए अपनी विरत अपने आप संभालिए, बस यही उसे कहूंगा, इन लोगों से क्या, ये करने वाले कौन है। तो इसलिए कहते हैं पद्मजाचित ध्येयमापदि, ध्यान करने से ही जरूर समस्त प्रकार की विपत्तियां दूर कर देते हैं। ध्येयमापदि संतचंतये, संत मंचते, संतम माने क्या, सुख, स्वाभाविक रूप में नित्य सुख पर वस्तु को संतम कर देना। जीवों को यदि उस चरण का आश्रय यदि करता है तो इस जीवन में भी परजीवन में भी नित्य सुखी रहेगा, दुख का कारण उपस्थित होने पर भी, दुख होने पर भी उसको दुख नहीं समझेगा। नारद जी की मैया मर गई तो उन्होंने क्या किया, आनंद में चारों खाने चित्त होकर के दौड़ पड़े भगवान की तरफ, बहुत अच्छा हुआ हमारा घर जल गया, बल्लभाचार्य जी का घर जल रहा था, उनकी पत्नी ने कहा घर से निकलो घर से निकलो, तब तक कभी घर में है जब तक कि घर नहीं पूरा जल, जब पूरा घर जलने लग गया तो घर से निकले और चले बाहर में, जाने लगे बाहर में, कहे तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमने कहा कि घर से जाओ घर जल रहा है, तो घर तो जल गया अब तो बाहर में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, घर में नहीं है अब तो बाहर में जा रहा हूँ, जाकर के सन्यास ले लिया, और दूसरे दिन गंगा जी में खड़े होकर के चित्त को प्रभु में लगाया, बस जिस चीज को हम लोग दुख कहते हैं उनके लिए वो सुख का कारण बन जाता है, ऐसे भक्तों के लिए संत संतते धरणी मंडलम, आपके चरण कमल कैसे हैं, पृथ्वी के लिए मंडल से कमंडल हुआ, गोपियां कहती हैं कि कौन उसके पहले, जब आपको बराह परिरंभणे नन है न, बराह बपुषा परिरंभणे न, आप बराह रूप में जब गए पृथ्वी को लाने के लिए पाताल से, उस समय में आपने उनको ग्रहण किया, तो इसलिए पृथ्वी पुलकित हो रही है अभी, न कि इसलिए पुलकित हो रही है, पुलकित हो रही मैंने रात के समय में कृष्ण जी के चरण पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, और पृथ्वी अत्यंत हम ना अत्यंत आनंद से भर गए, रोमांचित और पुलकित, लताओं में पुष्प विकसित होने लगे, अश्रु के रूप में धाराओं धाराएं निकली, गंगा जमुना की धारा, ये पृथ्वी की धाराएं, पेड़ पौधे जितने हैं फूलों से भर गए, इसलिए मानो देख रही हैं गोपियां के ये तो आनंद के मारे पृथ्वी, तो वो उन्होंने किया था, अथवा बराह जी का, अथवा इन्होंने वामन देव जी ने पृथ्वी पर चरण रखे और रख करके अपने पैरों को ब्रह्मलोक तक पढ़ाया, उस समय में पृथ्वी को अपने चरणों से आक्रांत किया था, उससे पृथ्वी आज पुलकित हो रही है, नहीं ये बात नहीं, फिर कैसे रामचंद्र जी बिना खड़ाऊ लेकर के गए थे वन में, किंतु भरत जी मुश्किल से चतुराई करके वो ठग लाए चरण पादुका, उनकी एक रजाई थी, वो रजाई भी ले लिया। कहते हैं ये सब मायावादी। ये भरत जी बड़ा चतुर था, उन्होंने रामचंद्र जी को झांसा दे करके चतुराई से ले उ रजाई, रजाई मैंने होता है आदेश, तो उसको लगाया रजाई, और पादुका मैंने वो पादुका ले लिया, पादुका ले लिया और रजाई भी, जो शीत में वहां पर बड़ी मुश्किल से बनो जंगल में मिलती है तो उसको ले। अरे इसका अर्थ ये नहीं होगा, लोग लगाते हैं, अर्थ होगा क्या, रामचंद्र जी की का आदेश लेकर और उनसे वो खड़ाम लेकर के अपने आराध्य के रूप में पूजा करके, पूजा करने के लिए अपने सिर में रख करके वो जब चरण पादुका का इतना महत्व, रामचंद्र जी के चरणों का महत्व क्या, रामचंद्र जी अब वहां से दंडकारण्य में जब गए, खड़ाऊ तो अब था नहीं, कैसे गए, पैदल पैदल अपने चरणों को रखते हुए गए। उसमें पृथ्वी आनंद से भर गई, वो आज हमारा परम सौभाग्य है कि ये रामचंद्र जी ये लीलाएं कर रहे हैं और श्री चरण को हमारे ऊपर निकल, आज हमारा श्री अंग, हमारा हृदय आज सुशीतल हो गया, इसलिए पुलकित हो रहे हैं। गोपियां नाना इसलिए नहीं, इसलिए आज के दिन रास के समय में आप जमुना के उपकुल में अपने सुजात अच्छे अत्यंत सुंदर और चरणों से, सुकोमल चरणों से रास में आनंदित होकर के नित्य कर रहे हैं। रामचंद्र जी का विरह और शोक में उधर में जाना, वैराग्य लेकर के उस पर पृथ्वी का चलना, ये पृथ्वी का सौभाग्य है, न कि लाखों करोड़ों गोपियों के साथ में गोपियों के श्रृंगार करते हुए, उनकी थकान मिटाते हुए और अपने मनमथ मनमथ रूप में रह करके और वहाँ पर नृत्य कर रहे हूँ, पृथ्वी का कौन सा सौभाग्य हुआ अपेक्षा के, ये इसलिए आज पृथ्वी जी धरणी मंडनम। और दूसरी बात, आप पृथ्वी जैसे कठोर इस पृथ्वी पर अपने चरण कमलों को दे सकते हैं, क्या वजह है कि हमारे श्री अंगों पर जो उससे भी लाखों गुण कोमल सुगंधी मृदु मधु सुगंध से भी अधिक सब विषयों में श्रेष्ठ हमारा श्री अंग, उस पर रखने में आपको हिचक हो गई। यही चरण कमल कैसे हैं, रमणनाथ तनेश अर्पयाधीन, ब्रह्मा जी के पूज्य, शंकर इत्यादि के ध्येय, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के ध्येय, और सुख के मूल कारण हैं। उसमें सबसे सुख का मूल कारण क्या है, गोपियों के साथ में जो रास करने वाले जो कृष्ण हैं, उनको मनाने वाले कृष्ण ने धरणी और धरणी का मंडल भूषण स्वरूप, हमारे ही अंगों का भूषण अभी बनाइए तब हम जानेंगे कि आप हमको दर्शन दे रहे हैं। इसलिए चरण पंकजम नस्तनेश अर्पयाधीन, हमारे आदि को व्याधि को दूर, व्याधि माने क्या, ये जो विरह होने का, इसको इस तरह से चरण कमलों की वो वंदना करते हुए कह रही हैं। ऐसे जो चरण हैं जगत के लिए सुखदायी और हम ही उनके चरणों की प्रणत हैं और हमको अभी इतना दुख दे रहे हैं, इसलिए सूजा याद करें आप यशोदा जी के, इसलिए आपको इस चीज का याद स्मरण रहना चाहिए, हम उन चरण कमलों को, ऐसे जो चरण कमल गुण है वाले हैं, भीता सनई प्रिय दधी मही कर्कशी, हम अपने कर्कश शरीर पर हृदय पर इन सुकोमल सुजा सुगंधी मृदु चरणों को धीरे 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 रखती है, इसलिए उसमें हमको एक तरह से तो आनंद होना चाहिए, आनंद हो रहा है किंतु साथ ही साथ में एक भय और दुख हमारे हृदय में आया, क्या इन चरणों को कहीं रखने से कृष्ण के सुकोमल चरणों में व्यर्थ आनंद, इसलिए मिलन में भी दुख देने वाले हैं, ये उनका कहने का तात्पर्य। इसी तरह से ये सब अधिवृद्ध महाभाव के साधारण लोगों के लिए संभवपर नहीं। तामिल इतना डरते हैं उसके लिए, इसलिए मिलन में भी डर। इसी प्रकार से कृष्ण के जितने भी प्रकार के उनसे मिलन है, सब मिलन में वो डरते हैं। हिताशन नहीं, धीरे धीरे रखने में भी, रखती क्यों हो, क्या जरूरत है? इसलिए कि हम जानते हैं कि इससे आपका सुख होगा, किंतु फिर भी हमें डर होता है। आपके सुख के लिए आशा करो, तो फिर डरती क्यों? इसलिए कि आपको कहीं कठोर अनुभव न हो और आपको दुख न हो। तेना और ऐसे चरण कमलों से आप तेना अटविन अटसी वन में आप भ्रमण करो। पहले बताया शिर तुड़ान कुरई, और यहाँ पर करें कुरुपादि भी। यहाँ पर शिल नहीं कहा, पत्थर नहीं कहा। वो जमुना के उपकुल में गोवर्धन की तराई में जहाँ पर पहाड़ थे वहाँ पर वो कह रहे। अब इसको ये समझ लिया जाइए, ये कुछ भीतर का भाग, यहाँ पर की कुछ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे कुंज लताएं ये सब हैं। कुछ कुछ वहाँ पर रहने की संभावना है, पेड़ के पत्ते जो सूख जाते हैं वो सूख सकते हैं। कुरुपाद माने नए नए अंकुर घासों के हैं, उनके लिए कुरुपाद भी भ्रमति हिर भवदाद। क्या आपको चरणों में व्यथा नहीं लगती? कृष्ण कहते हैं यदि व्यथा होती तो मैं रोज रोज थोड़े आता, मुझे तो व्यथा नहीं लगती। ये कहती हमें तो व्यथा लगती है। क्यों व्यथा लगती है तुम लोगों को? भवदायुषा भवत आयुषांग न, आप हम लोगों के जीवन प्राण, इसलिए आपको लगे नहीं लगे। एक आदमी जो है क्लोरोफॉर्म कर दिया उसको, और उसके किसी अंग को काट लिया या सुई चुभा दिया, उसको नहीं लगता है जिसको अंग, किंतु उसको जो देखने वाला उसका यदि कोई प्रिय व्यक्ति वहां रहे ना तो क्या होगा? एक समय में हम लोग के गुरु जी बावन महाराज जी को उनका हाथ फ्रेश में आ गया। गुरु जी बन महाराज जी को लेकर के गुदी में बड़ी मुश्किल से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में गए, बड़े शिष्य वत्सल हरि भी सेवक वैसे लेकर के गए। उनके साथ में नरसिंह महाराज इत्यादि और लोग भी गए। ये घटना हमारे आने के साथ पहले की, आने के पहले की, या मैं रहा हूँगा तो कहीं दूसरी जगह होगा, चिचुड़ा की बात, आप लोगों के आने के पहले है तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ले गए। तो वो इन लोगों ने कहा कि जहाँ ऑपरेशन होना है तो यहाँ पर ये लोग भी जाने लगे, तो गुरु जी को मना कर दिया जैसे आप मत जाइए, हम लोग देख सुन रहे हैं। तो गुरु जी महाराज जी बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे, और नरसिंह महाराज जी थिएटर रूम में केवल देखने के लिए गए। मैं देखता हूँ, हम थोड़ा सा झांक करके तो उनको लेटा दिया और थोड़ा सा कुछ किया नहीं, बस वहीं पर गिर गए।
नरसिंह महाराज
एक मिनट देर नहीं लगी, वहाँ पर गिर गए
नरसिंह महाराज जी।
नरसिंह बस पकड़ करके धीरे धीरे इनको क्यों हुआ दुख, ये क्यों गिर गए? डॉक्टर लोग नहीं गिरे क्यों?
डॉक्टर
जो चीट फाड़ कर रहे हैं
उनका आत्मीयता बोध नहीं है।
यही डॉक्टर का कोई अपना होता ना तो डॉक्टर अपना कभी ऑपरेशन अपने व्यक्ति का नहीं करेगा, जितना भी बड़ा डॉक्टर हो, न थिएटर में उसको जाने देंगे। इसलिए आत्मीयता बोध नहीं, इसलिए गोपियों का गोपियों की कृष्ण के प्रति इतनी आत्मीयता है, ये कृष्ण को नहीं लग रहा है चल रहे हैं, और ये बता किसको लग रही है? यही प्रेम का लक्षण होता है। सुख में भी उसके लिए दुख का भाव आता है, कहीं अनिष्ट न हो गया विलंब में, कहीं कुछ न हो गया, इसलिए कहते हैं कृपा विधि भ्रमति भी भवदाजुषान। क्यों? इसलिए कि हमारा आपका हम लोगों का प्राण ही आपका चरण है, इसलिए हम लोगों को ये पता लगता है, इसलिए आप जल्दी से हमें दर्शन दें, आप दुख कष्ट मत सहने, जंगल बन में मत जाइए। उसी की पूर्ति के लिए फिर ये दूसरा श्लोक कह रहे हैं, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्यम कमल विपिन वीथि गर्भांकुशाभ्यम प्रणत प्रणमत अभयदान प्रौढ़ी ग्राढ़ आद्रिताभ्यम किमप बहुत चेत कृष्ण पादाम्बुजाभ्यम। ये ले रहे हैं कृष्ण कर्ण, जितनी जितनी समाप्ति के आगे तक बढ़ रहे हैं उतना ही मधुर से मधुर से मधुर से मधुर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्यम, इसके तीन चरण कर लो, तीन उदाहरण दिए। एक दिया ऐश्वर्य को और दूसरा दिया ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का मिला हुआ, और तीसरा दिया केवल माधुर्य, जानबूझ करके नहीं दिया, सरस्वती की अपने आप ये सब निकल। गोपियों ने जो कुछ कहा है, जो भारतीय संस्कृति में सबसे मूल्यवान धरोहर है, वो गीता भागवत का इकतीसवां अध्याय है, या उद्धव संवाद में भ्रमर गी अथवा गोपी गी, गोपियों ने जानबूझ करके साहित्य अलंकार दे करके नहीं कहा, ये सुखदेव की अपनी कथनी नहीं है, ये किसकी है? गोपियों की अपनी एकदम वक्त उनका ये श्लोक रचित है, ऐसा नहीं कि उनका भाव था और इन लोगों ने व्यास जी ने अथवा सुखदेव गोस्वामी ने छंद के आकार में रख दिया, ऐसा मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगा। ये गोपियों के भाव स्वरचित ये सब चीजें हैं
स्वाभाविक रूप में,
स्वाभाविक रूप में उसमें ये देख करके ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये शब्द जोड़ दें तो ये ठीक होगा, यहाँ पर ये अलंकार होना चाहिए, ऐसा नहीं, अपने आप निर्झरणी की भांति में ये सब निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाम, तो निखिल भुवन लक्ष्मी ये है ऐश्वर्य, आस्पदाभ्याम उसके ये आस्पद स्वरूप है, क्यों क्या उनके चरण, लक्ष्मी जी का आस्पद हुआ तो और बाकी क्या रह गया। कमल विपिन वीथि गर्भांकुशाभ्याम ये ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों हुआ, कैसे? कमल विपिन वीथि, कमल विपिन वीथि उनका गर्भ, अंकुशाभ्याम हाथी को जैसे अंकुश है उसको मतवाले हाथी को भी वशीभूत कर लेते हैं, इस प्रकार से श्री कृष्ण के चरण कमल, कमल विपिन की वीथि जो कि सौगंध माधुर्य इत्यादि से भरा पड़ा है और उसको इतना गर्व है, ये इतना हम सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इतने सुगंध से युक्त हैं, इतने मनोहर हैं, उसकी शोभा को भी अपने अंकुश से, अपने सौंदर्य चरण कमलों के सौंदर्य इत्यादि से, माधुर्य से, अंकुश से प्राप्त कर देता है, ये कुछ ऐश्वर्य और माधुर्य। और प्रणमत अभयदान प्रौढ़ी गाढ़ा दिताभ्यम इसको मधुर गोपियों के इन्हीं का ये वर्णन करेंगे, ऐसा जो आपके जो चरण कमल हैं कैसे हैं, किमपि बहुत चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्यम, इसमें जो एक निखिल माधुर्य है सौंदर्य है उसकी धारा, इसमें मकरंद की धारा जैसे निकलती है, वो धारा जो है उसमें एक अपूर्व आनंद है, कैसा है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनवरचनीय आनंद, वह आनंद हम लोगों के हृदय में, हमारे हृदय में ये उनसे प्रार्थना करना। ये किसका ये श्लोक है? कर्णामृत में बिल्व मंगल जी का है। वो थोड़ा सा कृष्ण पक्षी हैं, किंतु कृष्ण पक्षी होने पर भी उनमें एक विशेषता है, सब समय कृष्ण के चरण कमलों का, उनके अंगों का, कृष्ण का संबंध गोपियों से लगा करके और राधा जी से लगा करके वर्णन करते हैं। मनोराधिका जी की सेविका होने के कारण ही या प्रेयसी होने के कारण कृष्ण के इतना माधुर्य और ये सब चीजें बिना उसके नहीं हो सकता। जैसे कि सनातन गोस्वामी ने जितने भी स्तोत्र प्रार्थनाएं पाव और स्तुतियां हैं उसका संबंध कैसा दिख रहा है? जहां जहां कृष्ण के से संबंध है उसको उन्होंने दिखलाया, और जहां पर वो सबसे अधिक है गोपियों से संबंध, वही स्तोत्र सबसे श्रेष्ठ। जैसे वो कृष्ण संबंधित और सभी श्लोक हैं, पूर्णा वो अर्चित हैं इतना तो कर रहे हैं अभी, किंतु कुछ अभी नहीं आया, किंतु इसके बाद जो कहते हैं क्या कहते हैं? गोपीनाथ माने उनके समस्त अंगों में भी जो श्रेष्ठ अंग गोपीनाथ कुछ कौन कुमार की तम गोपियों ब्रज से संबंधित, मथुरेश कृष्ण से और द्वारकेश कृष्ण से उनका संबंध नहीं, आज यही तक रहे कि कृष्ण के ऐसे जो कृष्ण के चरण कमल हैं उसमें कौन सा ऐसा मधुर सुख प्रवाहित हो रहा है, निर्धारित हो रहा है, जिसकी मुख से वर्णन नहीं किया गया और न वचनीय। वो कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों का वह जो सुख रूपी जो मधुर है वो हमारे हृदय में सब समय रहता है, उसके लिए प्रार्थना। उसी के लिए कहे कौन निखिल भुवन लक्ष्मी, भुवन की लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी शोभा की का आश्रय, किंतु यहाँ पर निखिल भुवन की लक्ष्मी, तीनों भुवनों की लक्ष्मी है श्रीमती जी। उनके नित्य लीलास्पदाभ्यम, उनके लीला की का आश्रय ये चरण कमल है, उसके लिए ये करें। जतपाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयसी। श्रीमती राधिका जी उन चरणों को पाकर के कैसा समझती हैं? लीला स्वयंवर रसम, स्वयंवर में जो आनंद होता है उसकी अनुभूति करती है वो श्रीमती राधिका। गोपियां उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों में जो वह रस है हमारे हृदय में प्रभावित हो, इसकी कल अगले दिन देखा। आज ये वंचा रहस्य अष्टम ज्ञान से कल हम लोगों ने यत्ते सुजात चरणम वरु हम स्तनेषु भीतास्वनै प्रियते धीमहि कर्कशेषु, श्लोक की का अनुवाद और थोड़ी सी व्याख्या हम लोगों ने सुनी। गोपियां कह रही हैं जैसे वैसे आप विरस से तो दुख देते ही, मिलने में भी आप दुख ही देते, उसी के लिए ये बतलाया
आपके सुकोमल चरणों को, जिसके चरणों की हम लोगों ने कल कुछ बतलाई थी, चरणों की महिमा कैसी है, उन चरणों को हम अपने अंगों पर रख करके भी अनुभव करती हैं कि आपको कष्ट होता होगा और उस कष्ट से हम लोग बहुत दुखी करते हैं। इसलिए उस समय में भी मिलने पर भी हमें आप दुखी देते हैं, विरह में तो दुख देते ही हैं। ऐसा ही होता है यदि सचमुच में हमारा कोई व्यक्ति प्रिय हो, उसके लिए ऐसा ही होता है। कल हम लोग एक इसमें से खोज रहा था उसको सुनाने के लिए, सुनाने ये था कृष्ण की अपनी एक पहचान है ना? ऐसे कौन से भगवत अवतार हैं जो श्याम नहीं है, कृष्ण नहीं है? राम भी तो श्याम दुर्बल है, वामन जी भी तो
श्याम है,
जितने भी अवतार हैं भगवान के हरि हैं,
कृष्ण है, गोविंद है, मुकुंद
है, ना ये नहीं,
महाप्रभु को छोड़कर का सब श्याम है।
जितने अवतार हैं उनके अंगों का रंग श्याम अथवा कृष्ण है सभी का। तो केवल श्याम कहने से ही गोपियां या उनके जो धारा में हैं वो प्रसन्न नहीं होते, संतुष्ट नहीं होंगे। श्याम तो सभी हैं, किंतु उनके जो श्याम है भक्तों के बोला क्या भक्त लोग कहते हैं श्याम तो सभी श्याम हैं, किंतु हमारे श्याम वो श्याम नहीं है। उनके श्याम कैसे हैं? हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे श्याम कैसे हैं? हमारो श्याम मुरली वारो। इनके हाथ में मुरली है ना, वो श्याम, धनुष बाण रखने वाले हाथ में वो श्याम नहीं, मृग चर्म और छत्र रखने वाले कान उंगली वाले श्याम हमारे श्याम नहीं, बंधन में फटकने वाले जो श्याम हैं सीता और लक्ष्मण जी के साथ में, वो श्याम हमारे श्याम। हमारे श्याम कौन है? हमारो मुरली वारो श्याम, जिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानतना, सभी के नाम श्याम है किंतु उनका मूल लक्षण या पहचान ये है, जिनके हाथों में मुरली है और बनमाला यहाँ से पैरों तक लंबी झूलने वाली सतरंगी सात फूलों की वो माला है और मयूर पंख यहाँ है, यदि ये सब चीज़ें हैं तो वो श्याम से हमारा संबंध है, ये ब्रज के श्याम है। अन्यथा श्याम होने से ही श्याम वो हमारे आराध्य नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। श्याम नाम सभी रखें, उद्धव ही तो श्याम है ना, श्याम है और श्याम के सभी अलंकार वस्त्र सभी हैं, किंतु श्याम वो श्याम श्याम नहीं है, तो केवल नाम से ही उनकी पहचान नहीं होगी, मुरली होगी, चंद्रिका होगी, ये बनमाला होगी, ये एक और श्याम है जिसको समुद्र की नमकीन हवा लग करके वो भी श्याम हो गई है, वो भी, किंतु उसके हाथों में भी मुरली है, ये चंद्रिका है मूर्ति न बनवाला ही है, सोने की माला झलमल करेगी, सोने के मुकुट लाएंगे उनको, और है श्याम गोभी, किंतु वो श्याम गोपिया पहचान लेगी कि इनको यह है ना वही उनके श्याम है, उन्हीं से उनका मतलब है। बिना मुरली मुरली नहीं होने पर वनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम, केवल नाम से ही श्याम से श्याम नहीं हो जाए, उस श्याम से हमारा कोई संबंध नहीं। गोप रूप वृंदावन वासी उसका पहचान और है, गोप रूप होगा, हाथ में लक्षड़ी लपटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी लपटी, और वृंदावन वासी वृंदावन का रहने वाला, ब्रजन पूरत कहाँ, अब ब्रज के जितने लोग हैं उनकी चाकरी करने वाला है। पूरत काम माने क्या, ब्रज के लोग चाहते हैं जैसा वैसा ही उससे कराते हैं और वो करता है, उनकी सेवा में सब समय नियुक्त रहा। नंद बाबा ब्रजवासी कहते हैं जैसे जरा जूती लियो तो ये पूर्ण काम है, नंद बाबा के इस काम को पूर्ण कौन करता है, वही चंद्रिका धारण के में हाथ में बंसी में ठुमक ठुमक कर जाता है और उनके उस चमड़े की पादुका को सिर पर रख करके और ले आ करके बाबा के सामने रख देता है। कोई कहती है पूर्ण काम माने जरा वो पीढ़ी ले आना तो बैठने, वो पीढ़ी लाने के लिए जाता और उठता नहीं, वहाँ करने लगते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाने में कुछ श्रम नहीं और पीढ़ी नहीं उठाता, उनकी कामना को पूर्ण करते। गोपियाँ कहती हैं देखो चुल्लू भर मट्ठा देंगी, जरा नाचो तो कैसे नाचता है तुम, और लोभ से उनके मुख में लार टपकने लगता है और एक पे यहाँ रख करके और दूसरा ऐसे कर करके आलाप लगते हुए और नृत्य करने लगते, गोपियों के मन को पूर्ण करते हैं। रास किस लिए हुआ, रास का प्रयोजन क्या, गोपियों के को प्रसन्न करने के लिए ही, वो तो आत्मा राम आप्त काम है, उनको कोई जरूरत नहीं, गोपियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, गोपियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही रास अंतर्ध्यान हो गए। और फिर रास लौट भी आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, न पा रहे हम इस प्रकार से किया, तो गोपियों के काम पूर्ण करने के लिए सब प्रकार की सेवाओं को करते हैं। यही जो हित यही सो हित चित नित बाढ़ो दिन दिन पल पल ज्ञान कहते, इसीलिए उनका ब्रजवासियों के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण का और कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का नित नित पल पल में यह आनंद बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है। नंदीश्वर परसानु गोवर्धन विश्राम, कहाँ विश्राम करते हैं वो, नंदीश्वर में, नंदीश्वर मैंने नंदगांव, परसानु गोकुल, गोवर्धन मैंने वृंदावन, गोवर्धन राधा कुंड सब उसके अंतर्गत, यही उनका विश्राम है। नागरी दास एक हो गए हैं, नागरी दास कहते हैं नागरी दास द्वारका मथुरा इनसो कैसो काम, इनसे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं, उस श्याम से कोई प्रयोजन नहीं जो द्वारका में और मथुरा में भी श्याम करते हैं, जो हस्तिनापुर में भी श्याम करते हैं उस श्याम से हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं। हमारा तो प्रयोजन है जो श्याम ब्रज में रहते हैं, ब्रज के भाव से रखते हैं, ब्रज के गोपाल बन करके रहते हैं, सिर पर मयूर पंख धारण करते हैं, हाथों में बांसुरी है, उस श्याम से ही हमारा ये काम है।
अब बतला रहे हैं कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं। कल बतलाया ना, ऐसे चरण कमल हैं जो कि गोपियों ने उन्होंने रास के समय में, उसके बाद में वो बतलाया ना, प्रणत कामदम पद्मजातम धरणि मंडनम हे रमापति चरण पंकजम संत चमत्रे रमण गणेश
अर्पण।
ये सब बताया गोपियों गोपियों ने कृष्ण चरणों की महिमा बताया, और भी मैंने बताया। अब उसी को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कितने भावुक आदमी हैं, कितने भावुक पर रसिक हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। उन लोगों को कृष्ण करणामृत पूरी याद, महाप्रभु जी दक्षिण देश से इसको जब ले आए, सर्व दामोदर को दिया उन्होंने लेकर के कंठस्थ कर लिया, और उन्होंने जितने माँ के भक्त थे सबको दिया, और सबने उसको कंठहार बना लिया। गोपाल भट्ट जी एकदम पूरा मुखस्त कर दिया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी सब लोगों ने एकदम उसको मुखस्त कर दिया। देखो गोपाल भट्ट जो है ना, रूप गोस्वामी से उम्र में बड़े हैं, ठीक है, बैठ, उम्र में बड़े हैं, विद्वान भी बड़े हैं, ये बड़े विद्वान आदमी। इन्होंने इस पर एक टीका लिखी है, पहले टीकाकार वही है गोपाल भट्ट जी, इसके दूसरे टीकाकार हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यही पहले टीकाकार हैं। इनकी टीका बड़ी रसीली है, और उनसे लेकर के कुछ चर्वित चर्वन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बहुत ही अद्भुत इनकी टीका है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, क्योंकि पर्वती हुए ना, उनका भी लिया और अपना भी, दोनों का आस्वादन करके उन्होंने लिखा है। तो उसी में से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जितनी जरूरत है अपने तो पूरा दिया, और जो कुछ बूंद या छोटी सी छोटी छोटी बूंदों के रूप में फुआरा के रूप में कुछ छोड़ दिया, तो उसी को हम लोग यहाँ पर कुछ वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, बिल्व मंगल ठाकुर जी कह रहे हैं, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्यम कमल विपिनिभिः गर्भांकुशाभ्यम प्रणमद अभयदान प्रौढ़ी गाढ़ा आदृताभ्यम किमपि बहुत चेत कृष्ण पादंबुजाभ्यम। कल हमने इसको आरंभ किया, भक्त लोग नाम करते हुए इन सभी श्लोकों का जो जो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है, और इन श्लोकों को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका थोड़ा सा भाव ग्रहण करेंगे और तब नाम करेंगे, तो नाम में रुचि रखेंगे, नाम निरस नहीं होता। नाम कैसा है, भगवान का नाम सरस और मधुर से भी मधुर है, किंतु किन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए है, जिनका हृदय कुछ सरस अब हो रहा है उन लोगों के। नाम एक बीज के समान है, ना मेरा कलिका नाम है ना अद्भुत
प्रकाश,
पहले प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेरदा है ना परे प्रकाश। भगवान का नाम एक कली के समान है, एक बीज के समान है। बीज का समान मान लो और उसको मिट्टी में लगाओ और पानी से सींचो, पानी यदि खारा हुआ तो वो अंकुर नहीं होगा, सींचो नहीं तभी वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छे पानी से, नदियों के पानी से यदि सींचा जाए तो बहुत जल्दी अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद में उसमें पत्ते आएंगे कोमल कोमल, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ता जाएगा,
विराट छायादार हो जाएगा, उसमें फूल लगेंगे, उसमें फल लगेंगे और पक करके तब फिर वो गिर पड़ेंगे अपने आप। इसी तरह से नाम है, भगवान की कथा है, पहले बीज के समान उसमें रुचि नहीं लगेगी, वो निरस सा दिखता है, कुछ ही उसमें दिखता नहीं है, किंतु इन श्लोकों के साथ में कोई पढ़े करते हुए श्लोक ये पढ़ा, यत्ते सुजात चरणं बरुहं स्तनेषु भीताश्वनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेना तविमसट तदप्यथते तेन कुंचे भवदाद्युषां। ये सबको पढ़े और कुछ भाव समझे और फिर हरि नाम, हरे कृष्ण, शरीर क्यों नहीं, हृदय क्यों नहीं सरस हो जाए, फिर नाम 10 घंटा करे, 20 घंटा करे, उसमें अरुचि पैदा है। और इन भावों के साथ में यदि नहीं करेगा तो अधिक देर तक मन नहीं कर सकेगा, उब जाएंगे हरि नाम करने से, वही नाम अंकुरित होकर के उसमें पत्ते आएंगे, अर्थात भगवान का रूप दिखेगा उसमें, फिर उनके परिकर दिखेंगे, उसमें लीलाएं आएंगी और परिकरों के साथ लीलाओं के सहमत में कृष्ण नाम करते हुए समस्त लीलाओं का साधक दर्शन करता है, आस्वादन करता है।